बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अब्बास रिज़वी प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद है कि जहां भी होंगे इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी बख़ैर व आफियत होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है बहरीन के अवाम की इनकलाबी तहरीक की दूसरी सालगिरह और इनकलाब बहरीन की खसूसियात। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे अपने मोज़्ज़ज़ मेहमानों से, मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद। जनाजिन 14 फरवरी 2011 को बहरीन के अवाम ने पूरा अमन तहरीक शुरू की जमहूरी और सियासी असलाहत के मुतालबे को लेकर, आज़ादी इजहार राय के हक के हसूल के मुतालबे को लेकर, और इस मुतालबे को लेकर के मुल्क में जो निज़ाम है उसमें सियासी तौर पर असलाह की जाए और एक शख्स एक वोट की पॉलिसी और कानून वज़ा किया जाए और इस बुनियाद पर हुकूमत और निज़ाम हुकूमत तश्कील दिया जाए। मगर इस पुरअमन तहरीक को और इस पुरअमन जायज़ और कानूनी मुतालबे को कुचलने के लिए न सिर्फ बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि बहरीन की हुकूमत ने सऊदी अरब और खलीज फ़ारस की दीगर अरब रियासतों के फौजियों को भी तलब कर लिया और बहरीनी अवाम के इस जायज़ मुतालबे को कुचलने के लिए आग, खून और बारूद का इस्तेमाल किया। मगर जायज़ कानूनी और बरहक मुतालबे की आवाज़ को ना तो ये हुकूमतें दबा सकी और ना ही मगरबी ममालिक और उनके ज़राए इबलाग दबा सके। चुनांचे आज 2 साल पूरे हो चुके हैं बहरीनी अवाम के इनकलाब के आगाज़ को और बहरीनी अवाम की हक पसंदाना और हुर्रियत पसंदाना आवाज़ न सिर्फ बहरीन बल्कि दुनिया के दीगर मुल्कों के हुकाम के ऐवानों तक पहुंच चुकी है। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। इसी सिलसिले में हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तरतीब दी है, उसे देखते हैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
चौदह फरवरी का दिन बहरीन के अवाम के लिए तारीखी मोड़ की हैसियत रखता है। सन 2011 में बहरीनी अवाम ने इसी दिन अपनी इनकलाबी तहरीक का आगाज किया जो बदस्तूर जारी है। जुमेरात 14 फरवरी को तहरीक के इनकलाब की सालगिरह के मौके पर अवाम ने इनकलाबी तंजीमों की अपील के मुताबिक मुल्क भर में मुजाहरे किए और सबसे बड़े मुजाहरे दारुल हुकूमत मनामा में हुए। हालांकि शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा की शाही हुकूमत ने मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर रखे थे और मुजाहरों को कुचलने की भरपूर कोशिशें भी की गयी। अद्दिया के इलाके में मुजाहिरीन पर बहरीनी सिक्योरिटी फोर्स के हमले में 16 साल का हुसैन अली अहमद अल जजीरी शहीद हो गया जबकि दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हुए। इत्तलात है कि मुजाहिरीन मुतादित शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज उन पर हमले कर रही हैं। इलाके में फैली इस्लामी बेदारी की लहर ने मुतादित मुल्कों में आमिर हुकूमतों का खात्मा कर दिया और अवाम के जमहूरी अजायम को गलबा हासिल हुआ। चुनांचे त्यूनिस, मिस्र, लीबिया और यमन में डिक्टेटर हुकूमतें गिर गयी। बहरीन में भी इस्लामी बेदारी की लहर फैल चुकी है जिसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। बहरीनी अवाम की इनकलाबी तहरीक की कुछ मुनफरिद खसूसियात हैं। बहरीन के अवाम ने जमहूरी हुकूक के मुतालबात के साथ 14 फरवरी सन 2011 से अपनी तहरीक का आगाज किया और अवाम दारुल हुकूमत मनामा के मारूफ पर्ल स्क्वायर पर जमा हो गए। बहरीनी अवाम ने शुरू ही से ऐलान किया कि उनकी तहरीक पुरअमन है और वो तशद्दुद का सहारा लिए बगैर अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। عوام کے اس مطالبے کے جواب میں مناما کی شاہی حکومت نے بڑا عجیب رویہ اختیار کیا۔ پرامن مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوجی تعینات کر دیے گئے، اور اتنا ہی نہیں، تحریک کے آغاز کو ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ بحرینی حکومت نے سعودی عرب کی شاہی حکومت سے فوجی مدد مانگی، اور نتیجے میں سعودی فوجی بحرینی عوام کی پرامن تحریک کو کچلنے کے لیے دونوں ملکوں کے مابین واقع پل سے گزر کر بحرین میں داخل ہو گئے۔ کچھ عرصہ اور گزرا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک کے فوجی بھی بحرین پہنچے۔ بحرینی حکومت نے مظاہرین کو بے رحمی سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ فورسز کے حملوں میں 100 سے زائد شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے، جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسپتالوں کے طبی عملے کے ان افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جنہوں نے مظاہروں میں زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کی تھی۔ حکومت کے حد سے زیادہ تشدد کے بعد عوام کے جمہوری مطالبات میں شاہی حکومت کی سرنگونی کا مطالبہ بھی شامل ہو گیا، اور انقلابی رہنماؤں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ عوام مطالبات پورے ہونے سے پہلے اپنی تحریک کسی بھی صورت میں بند نہیں ہونے دیں گے۔ بحرین کے انقلابی عوام نے استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کیا، لیکن ساتھ ہی اپنی تحریک کو پرامن رکھنے کے اپنے عزم پر بھی وہ قائم ہے، اور اب تک انہوں نے بہیمانہ تشدد کے جواب میں کبھی کبھار پتھر کے ٹکڑوں کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں اٹھایا ہے۔ بحرین کے عوام اس لحاظ سے انتہائی مظلوم واقع ہوئے ہیں کہ عالمی میڈیا اور عالمی برادری نے ان کی تحریک اور ان پر ہونے والے مظالم کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور اتنا ہی نہیں، امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد حکومتوں اور میڈیا نے بحرین کی ڈکٹیٹر حکومت کی حمایت کی۔ حالانکہ تیونس، مصر، لیبیا اور یمن سمیت متعدد ملکوں میں میڈیا نے شروع میں قدرے لیت و لال، کے بعد عوامی تحریک پر توجہ دی اور اسے عالمی سطح پر منعقد کیا۔ بہرحال بحرین کی عوامی تحریک اپنی تمام تر مظلومیتوں کے باوجود پوری مضبوطی سے جاری ہے، اور 2 سال کے عرصے میں عوام نے جس پائیداری و پامردی کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسی پائیداری کو کچلا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ اپنی منزل پر ضرور پہنچتی ہے، البتہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے۔
یہاں ہمارے ساتھی نے اپنے تجزیے میں کہا کہ یہ پائیمردی اور یہ پائیداری بہرحال اپنے کامیابی کو ضرور پہنچے گی، ممکن ہے کہ اس میں وقت لگے، لیکن اپوزیشن رہنما بحرین کی جو جمعیت وفاق اسلامی ہے اس کے سربراہ علی سلمان نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوری نظام کا جلد سے جلد معرض وجود میں آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ جلد سے جلد یہ نظام معرض وجود میں آ جائے گا، اور ہم ایک جمہوری حکومت کے قیام کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال اس درمیان خود بحرین کے علماء کی جو کونسل ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ہمارا مشن کامیاب نہیں ہو جاتا، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتے، ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمارا یہ انقلاب، ہماری یہ تحریک جاری رہے گی۔ اور بحرین سے جو تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ کہ اس وقت پورے ملک میں ہڑتال اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جو کل تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ گزشتہ بدھ سے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور پورے ملک میں کاروباری مراکز اور دکانیں بند ہو چکی تھیں، اور لوگ آج کے دن انقلاب بحرین کے آغاز کی دوسری سالگرہ منانے کی تیاریاں شروع کر چکے تھے، اور دیکھتے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورا بحرین اس وقت ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے، اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جو صورتحال اس وقت بحرین میں ہے اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آل خلیفہ کے حکام اور ساتھ ہی آل سعود کے حکام پر ایک وحشت اور لرزہ ستاری ہے، اور بحرینی شہزادوں نے اب مغربی حکومتوں کے دامن میں پناہ لینی شروع کر دی ہے، اور دوسری طرف مغربی حکومتوں نے ایک طرح سے سفارش کی ہے سعودی اور بحرینی شہزادوں سے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک قومی ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کریں تاکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکالا جا سکے اور تمہاری کہیں نہ کہیں سے نجات کا کوئی ذریعہ بن سکے۔ بہرحال چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب اکبر صاحب معاف کیجیے گا، کافی دیر آپ کی سماع خراشی کی۔ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بحرین کی جو انقلابی تحریک ہے اس کی خصوصیات اگر آپ سے چند جملے میں میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کی زبانی معلوم کرنا چاہوں تو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ چند خصوصیات بحرین کے عوام کی اس موومنٹ کو جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہاں پر جو موومنٹ اٹھی ہے اس کے قائدین, اس کے عوام, اس کے لوگ سارے کے سارے مسلسل امن کے ساتھ اور پورے یعنی استقامت یہ نہیں پورے یعنی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پرامن رہ کر اپنے حقوق جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگرچہ وہ شیعہ اکثریت کا ملک ہے لیکن اس کے باوجود وہاں شیعہ سنی اتحاد کے مظاہرے ہمیں جو ہے وہ مسلسل دکھائی دیتے ہیں. نمبر تین یہ ہے کہ وہاں پر امریکی بحری بیڑا لنگر انداز ہے اور فورن ٹروپس سعودی عرب کی قیادت میں افواج ان کے اوپر حملہ آور ہیں لیکن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ان کے اوپر کوئی وحشت ہے. اس کے باوجود وہ پورے استقامت کے ساتھ اپنے آزادی حق کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنی رائے کی آزادی, اپنی حکومت کی آزادی اور اپنی عوام کی منشا کے مطابق حکومت کو یعنی حاصل کرنے کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں. نمبر چار یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی ایک عجیب مظلوم موومنٹ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پہ مغرب کا میڈیا جو ہے اس نے اس پہ چپ ساتھ رکھی ہے اور مسلسل وہاں ظلم ہو رہا ہے لیکن دوسری جگہ پر مثلا شام میں چونکہ ان کے مقاصد جو ہے وہ حکومت کے جانے میں پورے ہوتے ہیں تو اس کا تو ہر وقت وہ اپنے حساب سے پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں لیکن لبنان بحرین کے مسئلے پر انہوں نے جو ہے وہ چپ ساتھ رکھی ہے اور ان کی حمایت میں پورا میڈیا جو ہے اس نے ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاموشی اختیار کی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں جو ہے اس کو ظاہر کر سکے. ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ باقی جگہ پہ اگر عوام اٹھیں, اگر کسی سنی ملک میں اکثریت سنی عوام کی ہو مثلا مصر میں لوگ اٹھے ہیں تو کوئی نہیں کہتا بھی وہ سنی اٹھے ہیں اور وہاں پہ سنی عوام نے جو ہے وہ قیام کیا ہے یا سنی عوام جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں. یہ آپ عجیب دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دھاندلی اور بے حسی اور منافقت آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں چونکہ شیعہ اکثریت میں ہے وہ اٹھے ہیں تو یہاں مسئلہ شیعہ سنی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود اگر یہ لوگ عوام جو ہے وہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اس انقلاب کی ایک خصوصیت کہی جا سکتی ہے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ ابھی ہمارے معزز مہمان جناب ثاقب اکبر صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے. بہت ہی جامع تجزیہ کیا انقلاب بحرین کی خصوصیات کے تعلق سے میرے سوال کے جواب میں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم امور کے ماہر اور بین الاقوامی تجزیہ نگار جناب ساجد رضوی صاحب. السلام علیکم جناب. ہماری ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی ثاقب اکبر صاحب سے میرا سوال تھا کہ انقلاب بحرین کی خصوصیت کیا ہے. بہرحال بہت ہی اچھا اور جامع جواب دیا انہوں نے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو عوام کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ملک میں جمہوری اصلاحات چاہتے ہیں, سیاسی اصلاحات چاہتے ہیں, ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد پر پارلیمانی سسٹم چاہتے ہیں, سیاسی سسٹم چاہتے ہیں, ہم بادشاہت کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ان کا یہ مطالبہ ضرورت سے زیادہ تھا؟
دیکھیں اگر تمام عرب ممالک جہاں پر بھی آمریت کی شکل میں یا جو حکمرانی کا جو سسٹم ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو عوام کی جانب سے ہونے والا کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہاں کے حکام کے لیے انتہائی ناگوار اور غیر مطلوب جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. عرب ممالک میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہاں عوام جو ہیں وہ کوئی مطالبہ کریں یا کسی چیز کی خواہش کا اظہار کریں. یعنی البتہ سیاسی تناظر میں بات کر رہا ہوں, یعنی سیاسی تناظر میں عوام کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. حتیٰ ان ممالک میں بھی کہ جہاں حق رائے دہی ہے, جہاں باقاعدہ بعض اوقات ووٹنگ بھی ہوتی ہے, الیکشن بھی ہوتے ہیں, پارلیمان بھی تشکیل پاتی ہے, لیکن وہاں پر بھی عملی طور پر جو ہے عوام کو جو ہے براہ راست किसी किस्म के मुतालबे का, किसी किस्म के मुजाहरे का, हत्ता उन नुमाइंदों को जिनको उन्होंने खुद अगर इंतखाब करके पार्लियामेंट में भेजा है, बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है, तो अपने पार्लियामानी नुमाइंदों से जिनका इंतखाब उन्होंने खुद किया उनसे भी मुतालबा करने का वो किसी किस्म का कोई हक नहीं रखते। लिहाजा बहरीन में जो कुछ पेश आया पिछले 1.5-2 सालों में वो वहाँ की हुकूमत और वहाँ के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था, और वो किसी किस्म का भी अवामी हलकों को सियासी तौर पर जो है आज़ादी देने के हक में नहीं थे और ना हैं। अवाम का मुतालबा पहले यही था जो आपने बताया, लेकिन बाद में अब जो अवाम मुतालबा कर रहे हैं, अब जो उसमें शिद्दत आई है, अब जो मुजाहरे हो रहे हैं, उसके अंदर जो है वहाँ बतौर कुल बादशाहत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। और रही ये बात, जैसे कि साकिब अकबर साहब ने भी अपने गुफ्तगू में इशारा किया, इसको मगरबी मीडिया या बाहर का मीडिया क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, क्यों वहाँ के मुजाहरों से मुतालिक रिपोर्ट्स या वहाँ के अवाम के मुतालबात जो हैं वो सामने नहीं आते, क्यों वहाँ की तस्वीरें या फिल्में या रिपोर्टें जो हैं हत्ता आज़ाद मीडिया भी नहीं देता।
यहीं पर रहने दिए जी, इस पर गुफ्तगु मैं आगे करूँगा कि मगरबी ज़रा इबलाग ने और मगरबी मीडिया ने क्यों ब्लैकआउट किया और क्यों बायकॉट किया बहरीन के इंकलाब का, इस पर आगे गुफ्तगु आएगी। चलते हैं दिल्ली स्टडी जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त मुमताज़ दानिश्वर और स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अर्शी खान साहब, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, बहरहाल मैं फिर उनकी खिदमत में हाजिर हूँगा। चलते हैं साकिब अकबर साहब की खिदमत में। साकिब अकबर साहब, मैंने जैसा सवाल के साजिद रिजवी साहब से किया कि आवाम ने तो पहले यही मुतालबा किया था कि हम एक वोट एक शख्स की बुनियाद पर एक सियासी निज़ाम चाहते हैं और बादशाहत का हम खात्मा नहीं चाहते। आप क्या समझते हैं कि क्यों शाही हुकूमत ने इस मुतालबे को भी तस्लीम नहीं किया और अब आवाम जो आले खलीफा की सरनगुनी का मुतालबा करने लगे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये शाही हुकूमत से एक तरह से चूक हो गई है?
मेरा ख्याल ये है कि इसको ज़रा गहरी स्ट्रेटेजिक जो इसकी बुनियादें हैं बहरीन की, जो असरात के हवाले से पूरे इलाके में, उसको नज़रअंदाज करके हम एनालिसिस नहीं कर सकते। चूँकि अगर बहरीन के अंदर ये बात मान ली जाए कि एक वोट और एक मतलब एक आदमी और एक वोट, तो इसके असरात फौरी तौर पर सऊदी अरब और दीगर इलाके की बादशाहतों और इमारतों पर इसके मुरतब होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर एक जमहूरी निज़ाम आ जाता है, चूँकि अगर असूली तौर पे ये तकरीबन वैसी ही डिमांड है जैसी शक्ल इस वक्त बरतानिया में है या जैसी किसी दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल बादशाहत, कानूनी बादशाहत या आइनी बादशाहत का तसव्वुर ईरान में जो है वो पैदा हुआ था, तो वो इब्तदा थी जमहूरी हकूक के हासिल करने की। और ये शक्ल भी दुनिया में यानी मानी जा सकती है कि एक आइनी सिलसिला जो है वो एक सामने बज़ाहिर बादशाहत का मौजूद रहे लेकिन नीचे वज़ीर आज़म को सारे इख्तियारात हों और वो आवाम की मंशा को जो है वो उसका मजहर जो है वो वज़ीर आज़म हो जाए। तो ये पहले चूंकि मगरब में ये कबूल शुदा सूरत थी तो वहाँ के लोगों ने इसको आवाज़ को उठाया, लेकिन सब जो इस इलाके के बादशाह हैं और उन बादशाहों के सरपरस्त हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये मान लिया जाए तो आखिरकार फिर सऊदी अरब इससे भी बड़ा मुल्क है और बिल्कुल हमसाया मुल्क है, उसके ऊपर जो है इसके असरात मुरतब होंगे और वहाँ पर भी ये अवाम जो है इस तरह का मुतालबा करेंगे। सऊदी अरब में इस वक्त तब्दीली जो है उसका मतलब बहुत दूरस यानी उसके असरात होते हैं। अमरीका और उसके हवारी नहीं चाहते कि इसराइल के मसले में कोई तब्दीली वाकया हो या सऊदी अरब के अंदर कोई ऐसी अवामी तब्दीली जो है वाकया हो, चूंकि फिर पूरे आलम इस्लाम और पूरे खत्ते में उनके जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं या इस्तेमारी मफादात बेहतर तौर पे कहना चाहिए वो जो है वो मुतासर होते हैं। दूसरी तरफ अवाम अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब वो अपने आइनी हकूक इस बादशाहत से मनवाना चाहते थे और इन्होंने उल्टा हमारी बात को कबूल करने की बजाय, बल्कि पहले जो हुक्मरानों ने इनसे वादे किए हुए थे उससे भी वो मुनहरिफ हो गए। अवाम तो बल्कि इससे भी पहले ये याद दिलाते रहे के नुमाइंदे भी असम्बली के याद दिलाते रहे कि जो आपने पहले हमसे वादे किए हुए थे वो हकूक हमारे जो है वो लौटा दो। वो जब उन्होंने नहीं दिए तो अवाम अच्छी तरह से समझ गए और उनके नुमाइंदे भी समझ गए कि इनके होते हुए ये जो हमारे जमहूरी हकूक हैं, जो मगरबी दुनिया में मशरकी दुनिया में मुसल्लम जमहूरी हकूक हैं, ये देने के लिए तैयार नहीं, तो वो मजबूर हो गए हैं ये कहने पर कि जनाब अब आपसे भी हम तवक्को नहीं करते, लिहाजा हम आपको भी कबूल नहीं करते। एक और बड़ी अहम बात मेरा ख्याल है उसको भी एनालिसिस में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये जब इस वक्त ये बरसर एक ये जो इस वक्त सऊदी अरब की फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं और अमरीकी एमाप पर मौजूद हैं, सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, अमेरिकन भी राइटर्स इस पे लिख रहे हैं, बरतानिया के राइटर्स इस पे लिख रहे हैं, इससे पहले कि ये कहा जाता कि जनाब हमें जो है वो गल्फ की जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई हुई है उसके तहत हमें बादशाह बहरैन ने हमें मदद की अपील की है, रिकॉर्ड पर बात मौजूद है कि सऊदी अरब के वजीर दाखला सऊद अल फैसल वो ये कह चुके थे जब इब्तदा हुई है वहां पे इनकलाबी मूवमेंट की कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सऊदी अफवाज जो हैं वो बहरैन में दाखिल कर देंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये पहले से ये सारे का सारा मिली भगत था और ये मंसूबा इनका पहले से मौजूद था। मेरा नहीं ख्याल कि आवाम जो है अब इससे कमतर किसी चीज पर जो है वो राजी होंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त जो उन्होंने डोल डाला है मुजाकरात का, ये अच्छी तरह से वहां के लीडरशिप ने कह दिया है इसके बारे में, जब आप सवाल करेंगे तो मैं इस पर भी थोड़ी सी
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ मुजाकरात की तरफ भी आऊंगा। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, डॉक्टर अर्शी खान साहब मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
डॉक्टर साहब इनकलाब बहरैन को 2 साल आज पूरे हो चुके हैं और पूरे आबोताब के साथ ये तहरीक जारी है, बहरहाल बहुत सी बातें होती हैं इनकलाब बहरैन और जो इलाके की दीगर जो तहरीकें हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप तूनिस मिस्र यमन लीबिया के इनकलाबात को एक तरफ रखें और बहरैन के इनकलाब को एक तरफ रखें और बहरैन के इनकलाब को इन इनकलाबात से अगर मुवाजना करना चाहें तो किस तरह से करेंगे?
देखिए जो बहरैन में जो इनकलाब बरपा है खास करके 2 साल से, पिछले 14 फरवरी 2011 में इनकलाब शुरू हुआ था और इसमें जो सबसे डिस्टिंग्विश्ड जो सबसे मुख्तलिफ चीज़ वो ये है कि बहरैन में जो इनकलाब है वो काफ़ी इंडिजिनस है, वो बिल्कुल अंदरूनी फोर्सेज हैं वहाँ पे, जो पीपल फोर्सेज हैं जिसको बोलते हैं सिम्बियोटिक कम्युनिटी, तो वो सिम्बियोटिक कम्युनिटी जो है वो इसको ला रही है और ये काफ़ी इंडिजिनस है, जिसको आप कहेंगे कि बिल्कुल काफ़ी सोशल बेस है इसका, इसके सोशल रूट्स हैं, इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेज नहीं हैं, इसलिए कि बाकी जगह जो इनकलाबात हुए हैं कई जगहों पे, वहाँ पे आपने देखा है कि फॉरेन फोर्सेस ने वहाँ पे फंडिंग की है, उनको असलहा फराहम किया है, उनको इंटेलिजेंस फराहम किया है, टेली कम्युनिकेशन फराहम किया है, लेकिन बहरैन के केस में आप देखेंगे कि जो इशू है वो काफ़ी जेन्युइन इशू है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इशू है, वो डेमोक्रेसी का इशू है और बहुत सारे इशूज़ हैं जो एक मिनिमम लेवल पे जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उस इशू को लाया जा सकता है। तो एक तो इशू के लेवल पे देखते हैं तो काफ़ी डेमोक्रेटिक मॉडरेट आप कह सकते हैं और बिल्कुल जेन्युइन जिसको कहा जाए पीपल ओरिएंटेड इशू है और मैं ये समझता हूं कि वहां पे जो इनकलाब है वो बेसिकली डिमांड कर रहा है कि एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, इसलिए कि वहां के जो लोग वो डिमांड कर रहे हैं, वो बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ऑथोरिटेरियनिज्म है, जो वन मैन रूल है, जो बेसिकली ऐसा रूल है जो आपके खानदान दर खानदान पे राइज है और जो टॉप पोस्ट पे हैं वो इलेक्टेड नहीं है, लोगों की लेजिटिमेसी उनके पास नहीं है, किसी भी तरह की लेजिटिमेसी उनके पास नहीं है और पूरी तरह से अपने आप पे पावर को ग्रैब करना और उसका फिर मिसयूज़ करना, तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है, इसलिए कि स्टेट का जो नेचर है, जो किंग्स हैं वो बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टेट का जो नेचर है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो वहाँ पे जो लोगों का डिमांड है वो ये है कि किस हद तक वहाँ की जो हुकूमत है वो रिस्पॉन्सिव है लोगों के च्वाइस के लिए, लोगों के विल और उनकी जरूरियात के लिए। तो ये बेसिकली क्लैश है कि जो स्टेट रिस्पॉन्सिव नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, और जो लोग इसको अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं, इन दोनों की लड़ाई है। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसको काफी दबाया गया है। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से देखें कि बहरीन में जो इश्यूज हुए, वो खुद वहां के मीडिया में या जो मिडल ईस्ट में जो मीडिया है उसमें काफी चीजें नहीं आई। जिस तरह से आप देखें जो वॉल स्ट्रीट में, जो वहां पे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का जो मूवमेंट चल रहा है अमेरिका में, उसको भी जिस तरह से दबाया गया, तो उसी तरह से बहरीन में भी जो है इसको दबाया गया है। और इसकी वजह सिर्फ यह है कि एक जगह पे आप डिक्टेटरशिप को हटाने की बात कर रहे हैं या जमहूरी निजाम को लाने की बात कर रहे हैं, और इसके लिए आप वहां पे लोगों को इमदाद फराहम कर रहे हैं, हर तरह का मोरल, टेक्निकल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी तरफ जहां पे जेन्युइन डिमांड है डेमोक्रेसी की, वहां पे आप कोई भी चीज उनको फराहम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा उनको लाइट भी नहीं कर रहे हैं उनके इश्यूज को। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बहरीन का केस है वो काफी मुख्तलिफ है, और बहरीन का केस से मैं ये समझता हूं कि बेसिकली एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, एक नए पॉलिटिकल सोसाइटी को बनाने के लिए है। जो आप देखेंगे अल्थूसियस, जोहानस अल्थूसियस जो जर्मन स्कॉलर हैं, या जो जी जाए रूसो आपके फ्रांस में जो आपके जो स्कॉलर थे, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे कि जो बहरीन का केस है वो वहां पे जो पूरा तबका है वो चाह रहा है कि किस तरह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट को वहां पे एस्टैब्लिश किया।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। सही साहब, आपकी गुफ्तगू चल रही थी कि क्यों मगरबी मीडिया ने इसका ब्लैकआउट किया, क्यों बाइकआउट किया, क्या वजह थी?
देखिए, जैसा कि जनाब साकिब अकबर साहब ने भी अपने गुफ्तगू के अंदर इशारा किया था कि अगर बहरीन में तब्दीली आती है और बहरीन के जो कुछ वहाँ हो रहा है वो दीगर अरब ममालिक में भी उसका इनेकास हो, और अरब ममालिक से बाहर भी जहाँ पर इस वक्त जो है इस्लामी बेदारी की तहरीक, जिसे हम कह सकते हैं कि उसके असरात जो हैं वो नुमाया होते जा रहे हैं और लोगों के अंदर ये शोर जो है वो डेवलप हो रहा है, उस असर को रोकने के लिए ये बहरीन के मामले का मुकम्मल तौर से जो है ब्लैकआउट किया गया है। बहरीन में अमेरिका का पांचवां बहरी बेड़ा तैनात है। बहरीन एक बहुत बड़ा अमेरिकी अड्डा है इस इलाके में, जहां से अमेरिकी जो हैं वो इस पूरे खित्ते को ईरान समेत जो है कंट्रोल करते हैं। खलीज फारस में आमदरफ्त पर उनकी पूरी नज़र है और निगरानी रहती है। वो नहीं चाहते कि बहरीन उनके हाथ से निकले, कि जिस तरह मिस्र उनके हाथ से निकल गया, जिस तरह ट्यूनिसिया उनके हाथ से निकल गया, जिस तरह लीबिया उनके हाथ से जो है वो खारिज हुआ। ये सूरत हाल जो है अगर बहरीन में पैदा होती है, तो जैसा कि साकिब अकबर साहब ने भी कहा कि इसके सबसे बड़े असरात जो हैं, सबसे पहले असरात जो नुमाया होंगे वो सऊदी अरब में होंगे, कि सऊदी अरब जो है बिल्कुल उससे मुत्तसिल है, और उसके बाद सऊदी अरब इलाके का एक बड़ा अरब मुल्क है, अरब मुल्कों में उसका बहुत ज़्यादा असर नफूज है। इसके साथ साथ चूँकि मक्का और मदीना शरीफ भी वहाँ वाक़े हैं, उसकी वजह से आलम इस्लाम में भी जो है सऊदी अरब काफ़ी असर व नफूज रखता है, और रिवायती तौर पर जो है तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में कह सकता हूँ कि वहाँ की हुकूमत जो है वो सऊदी बादशाहत से, सऊदी जो हुकुमरान तबका है आले सऊद, उनसे मुतासर हैं। इन हुकुमरानों के उनसे ज़ाती मरासिम भी हैं और हुकूमती सतह पर भी मरासिम हैं। लिहाजा ना अमरीका ये चाहेगा और ना वो ताकतें कि जिनके इस इलाके में मफादात हैं, तेल और गैस के उनके ज़खायर हैं, वो अगर उनके हाथ से निकल जाता है, बहरीन उनके कंट्रोल से निकलता है और उसके असर सऊदी अरब पे पड़ते हैं, और सऊदी अरब भी जो है अगर वहाँ पे भी हलचल है, वहाँ पे भी रोज़ाना कमोबेश मुजाहरे हो रहे हैं, अलबत्ता मशरक़ इलाकों में कि जहाँ की आबादी कमोबेश कह सकते हैं कि शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन बहरहाल सऊदी अवाम भी जो हैं वो उसी तरह जिस तरह बहरीन के अवाम या जिस तरह ट्यूनिस और मिस्र के अवाम जो हैं आमरियत के दबाव में थे, सऊदी अरब में भी जो है कमोबेश यही सूरत हाल है, बल्कि बाज़ जगह कहते हैं कि इससे भी बदतर जो है वह हालात हैं। लिहाजा बहरीन के मसले को जो उन्होंने ब्लैकआउट किया या नज़रअंदाज किया जा रहा है, मगरबी मीडिया मुकम्मल तौर से जो है जहाँ छोटी छोटी खबरों को जो है वो उनके कैमरे फौरन पहुँच जाते हैं। बहरीन में जो मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज जिनमें सऊदी अरब के सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बरहराज कार्रवाई कर रही हैं, उनको बिल्कुल भी जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि नहीं चाहते कि बहरीन का मामला जो है दीगर अरब ममालिक में या खित्ते के उन ममालिक में जो है अपना असर दिखाए कि जहां इस वक्त बेदारी की तहरीकें चल रही हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। साकिब अकबर साहब, बात आपकी मुज़ाकरात पर आकर रुकी थी। इतवार को मुज़ाकरात हुए और कल भी दूसरे दौर के मुज़ाकरात हुए हुकूमत के और मुखालिफीन के दरमियान। अलबत्ता یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ جو اہم اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کے رہنما یا ان کے مندوبین ان مذاکرات میں شریک نہیں تھے، بلکہ ان کے رہنما تو پچھلے ہفتے اور کل پرسوں تک کی بات ہے کہ وہ ماسکو کے دورے پہ تھے، من جملہ علی سلمان. لیکن جو مخالف رہنما اس میں شریک ہوئے تھے سلمان عبدالنبی، انہوں نے بھی کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے اور صرف یہ پورا عمل ایک دھوکہ ہے، فریب ہے اور جھوٹ ہے. تو پہلا سوال تو میرا یہی ہوگا آپ سے کہ حکومت نے ایسے وقت جب 2 سال پورے ہونے والے تھے مذاکرات کا سہارا کیوں لیا آپ کے خیال میں؟ اس کے بعد اگلا سوال پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسری سالگرہ انقلاب کے حوالے سے آ رہی تھی تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے عوام کی توجہ اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم سنجیدہ ہیں عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت یہی بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے ان کو اشارہ کیا گیا کہ اب آپ یہ راستہ جو ہے وہ اختیار کریں اور ظاہر کریں کہ ہم بات کرنے کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو آپ آئیں آ کے بات کریں تاکہ کورٹ جو ہے وہ اپوزیشن بال جو ہے وہ اپوزیشن کے کورٹ میں چلا جائے. اور اس میں یہ پس منظر موجود ہے کہ پہلے بھی دنیا میں جو عالمی مسائل امریکہ برطانیہ وغیرہ حل نہیں کرنا چاہتے تو اس کو یا لوگوں کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹا کے کسی اور طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر یہ کمیٹیاں بناتے ہیں، پھر یہ بورڈ بناتے ہیں، پھر یہ کمیشنز بناتے ہیں، پھر یہ رفت و آمد کرتے ہیں، پھر یہ بات چیت کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو بات چیت کی طرف لا کے کتنا یعنی کئی ڈیکیڈز جو ہیں وہ ضائع کر دیے. یہ جب سے یہ بات چیت کے عمل کو ضائع شروع کیا خود فلسطینیوں کے اندر اس کے ذریعے سے پھوٹ انہوں نے ڈالی، فلسطینیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور بات چیت کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ سوائے اس کے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی طریقے سے محفوظ رہے اور کوئی نہیں نکل سکا. لہٰذا خود اپوزیشن کے رہنماؤں نے جو تبصرے کیے ہیں اس میں بھی انہوں نے مثال دی ہے فلسطین کے مسئلے میں اور اسرائیل کے مسئلے میں
جی.
کہ بات چیت کا انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا. باقی دنیا میں بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ جو بات چیت 5+1 کی چلا رہے ہیں یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے، جب چاہتے ہیں شروع کر دیتے ہیں دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے کہ جناب ہم بات چیت کے عمل میں سنجیدہ ہیں. 8 ماہ بعد پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بات چیت، ادھر دوسری طرف اپنے مقاصد بھی پورے کرتے رہتے ہیں، پابندیاں بھی لگاتے رہتے ہیں، یہی حال یہ کر رہے ہیں، عوام کے اوپر حملے بھی کر رہے ہیں، ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں.
اگلا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، اگلا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، مختصر جواب چاہوں گا، ڈاکٹر ارشد صاحب دہلی میں منتظر ہوں گے. ابھی جو علی سلمان صاحب ہیں جمعیت وفاق اسلامی کے سیکرٹری جنرل، جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس کے رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک نظام کا قیام بہت ہی قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کن بنیادوں پر اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ عوام کی ان کو جس طرح سے حمایت حاصل ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ عوام کی اتنی بڑی قوت جو ہے وہ چونکہ اب سمجھ گئی ہے. یہ بھی آپ یہ دیکھیں کیسے ریجیکٹ ہو گئی ان کی، خود گورنمنٹ نے اب یعنی اپنا ایک جسٹس منسٹر جو ہے اس کو مقرر کیا ہے، خود اپنا وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے حکمران اور بادشاہ اصل میں. تو میرا خیال ہے کہ عوام کے ساتھ جو ان کا اعتماد کا رشتہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور ناکام ہو گئے ہیں اپنا دیگر تمام تر ان کو دبانے کے لیے اور جتنے ذرائع استعمال کر سکتے تھے ظلم کے، تو اس میں چونکہ ان کو ناکامی نظر آ رہی ہے اور عوام کا اسی طرح سے استقامت کا سلسلہ ان کو دکھائی دے رہا ہے، تو میرا خیال ہے اسی بنیاد پر انہوں نے یہ پیش گوئی کی ہے. اور ظاہر ہے کہ آج نہیں تو کل جو ہے اسی طرح سے عوام استقامت کے ساتھ کھڑے رہے
جی
تو یہ ظلم کی شب جو ہے یہ ختم ہو جائے گی
انشاءاللہ
کرے گی آزادی کی صبح.
بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ارشد خان صاحب، جب ہم تیونس سے لے کر مصر، یمن اور لیبیا اور دیگر جو ممالک ہیں جارڈن وغیرہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تیونس میں آپ دیکھیں وہاں بھی تحریک شروع ہوئی عوام کی، لیکن اسلحہ عوام کے ہاتھوں میں آیا. وہاں جو ہے دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، اگر عوام مارے گئے تو حکومتی اہلکار سیکورٹی اہلکار بھی مارے گئے. مصر میں بھی ایسے ہی ہوا، और लीबिया में तो पूरी दुनिया जानती है कि क्या हशर किया खुद मुअम्मर कज़ाफी के लोगों ने और जो उनके खिलाफ थे उन्होंने, और फिर नेटो ने जो किया वो सबके सामने। यमन में भी ऐसे ही हुआ कि असलहा मुजाहिरीन के हाथों में था, लेकिन जब हम बहरीन की दो साल तहरीक जो कि अब तक की सबसे तवील तरीन तहरीक है उस पर निगाह डालते हैं तो एक भी हुकूमती अहलकार, खा वो पुलिस हो, खा वो सिक्योरिटी अहलकार हो, खा वो फौजी हो, ना ये कि मारा नहीं गया, जख्मी तक नहीं हुआ। इसके बरखिलाफ अगर आबादी के तनासब से देखा जाए, कि मिलियन की आबादी बहरीन की, उसके तनासब से देखा जाए तो मिस्र, ट्यूनिस और यमन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा शहीद जो हुए हैं वो बहरीनी अवाम हुए हैं, और बहरीनी अवाम ने एक भी फायर नहीं किया, और अगर पत्थर चलाए तो वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने से दूर करने के लिए चलाए। ये जो बहरीनी अवाम की स्ट्रेटेजी है ये आगे चलकर उनके इनकलाब को कामयाब बनाने में कितनी मौसर साबित हो सकती है आपके ख्याल में, एक स्ट्रेटेजिक माहिर के हिस्से से आप क्या कहेंगे?
देखिए, एक ये बहुत ही लीडिंग फॉलो अप है, अगर आप वहाँ पे स्ट्रेटजिकली या पॉलिटिकली जो उसका डायमेंशन है पूरे मूवमेंट का, जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये काफ़ी डायलेक्टिकल है, इंडिजिनस है, डीप रूटेड है, और इसमें जो मोटिवेटिंग फोर्स है वहाँ पे जेन्युइन एस्पिरेशन है लोगों का कि किस तरह से वहाँ पे एक जिम्मेदार हुकूमत को इस्टेब्लिश किया जाए। तो जब आपके गोल्स बिल्कुल साफ होते हैं, जब आपके मकासद बिल्कुल साफ होते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ते हैं परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। तो वहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे हैं वो बल्कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, बल्कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जब मुजाहरे बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, चाहे उसमें इस्लाह उनको फराहम किया जाए या नहीं किया जाए, तो वो उनका एक चेन होता है और उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें बहुत सारे जो सिम्बियोटिक ग्रुप्स हैं एक दूसरे ग्रुप उनको सपोर्ट करते हैं, उनके काफ़ी फॉर्मेशंस आपस में मिलते जुलते हैं, तो एक तरह से फेडरेटिव यूनिटी भी वहाँ पे बनती है। तो आप यही देख रहे हैं बहरीन में कि वहाँ पे दोनों ग्रुप, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, जो इस्लामिस्ट हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो इस बात से भी नाराज़ हैं कि वहाँ पे जो हुकूमत है उसने खुद इस्लामिक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं दी, और जिस तरह से एक छोटे से आइलैंड में उसको बिल्कुल अड्डा बना दिया उन तमाम लोगों के लिए जो उस मुल्क के नहीं हैं और जो उस मुल्क के मफाद में नहीं हैं। अगर आप देखें पूरे बहरीन को, तो वहाँ पे जो इनके नवल और जो मैरीन वहाँ पे जो बसे हुए हैं अमेरिकन्स, वो आपके पर्शियन गल्फ, रेड सी और इधर आपके वेस्ट इंडियन ओशन, अरबियन सी, तमाम चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। तो जो पूरा जो बहरीनी सेटअप है, जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप है बहरीन का, वो किसी भी तरह से पॉलिटिकली, स्ट्रेटजिकली या कल्चरली वो लोगों के मफाद में नहीं है, रीजन के मफाद में नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जो मूवमेंट का डायमेंशन है वो काफ़ी जेन्युइन है और बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि रियली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसमें जो मोटिवेशन है वो आइडेंटिटी एक फैक्टर है, सिक्योरिटी एक दूसरा फैक्टर है, और तीसरा आपके डेमोक्रेसी का फैक्टर है। कि जब ये तीनों चीज़, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी, ये तीनों जब मोटिवेटिंग फोर्स होते हैं, तो वहाँ पे आप पे मुजाहरे को बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस में आ जाता है। और यही वजह है कि दो साल होने के बावजूद भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे खवातीन और
अर्शी साहब, मैं अगला साल भी आपसे करना चाहूँगा, वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमारे पास कम है और मुख्तसर जवाब चाहूँगा। आज ही मैं पढ़ा था, बहुत से मुबसिन का ये कहना है कि अब बहरीन का इनकलाब एक कमज़ोर और नया लगा हुआ पौधा नहीं बल्कि एक तनोमंद दरख्त बन चुका है, और उसकी दलील ये है कि आज बहरीन के इनकलाब से न सिर्फ आले खलीफा के हुकाम पर लर्जा तारी है बल्कि खुद आले सऊद के ऊपर भी लर्जा तारी है, और बहरीन के इनकलाब के असरात वाज़े तौर पर सऊदी अरब में देखे जा सकते हैं और दारुल हुकूमत रियाज तक में देखे जा सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों तक में देखे जा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब ने जिस मकसद के लिए फौज उतारी थी बहरीन में, कितना उसमें वो कामयाब हो सका?
देखिए, सऊदी अरब ने जो वहां पे इकदाम उठाया खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजने का, वो एक, मैं समझता हूं कि पीस कीपिंग मिशन नहीं था। आपने देखा कि हमने भी फोर्सेस भेजे थे श्रीलंका में राजीव गांधी के जमाने में, लेकिन उसे काफी बदनामी हुई और हमें फौज वापस बुलानी पड़ी। तो मैं ये समझता हूं कि सऊदी हुकूमत ने जो इकदाम उठाया सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजने का, उससे न बहरैन हुकूमत भी बदनाम हुई बल्कि सऊदी हुकूमत भी बदनाम हुई। और मैं समझता हूं कि उसका रिपरकशन या उसका रिएक्शन सऊदी में भी हो रहा है, वहां पे भी लोग मुजाहरे कर रहे हैं, नाराज हैं लोग। और यहां पे मैं ये कहूंगा आपके सामने कि ईरान एक मॉडल है जहां पे इस्लामिक हुकूमत है लेकिन इलेक्टेड हुकूमत है, तो क्यों नहीं इस तरह की चीजों को जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखें वो इलेक्टिव प्रोसेस को फॉलो करें और वहां पे गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाएं।
जी बहुत शुक्रिया आपका। साई साहब, शुराए उलमाए बहरैन या यूं कहा जाए कि बहरैन के उलमा की जो कौंसिल है उसने दूसरी सालगिरह के मौके पर वाज तौर पर और मुतहदा तौर पर ऐलान किया है कि जब तक हमारे मुतालबात या हमारा इनकलाब कामयाब नहीं हो जाता हम ये तहरीक जारी रखेंगे। इस मौके पर इस तरह का बयान आना किस बात की गमाजी करता है आपके ख्याल में?
देखें बहरैन दो साल से जो ये तहरीक चल रही है, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बगैर किसी असलहे के बगैर किसी हथियार उठाए लोग सड़कों पर मुसलसल पिछले दो सालों से हैं, इनमें ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। और आपको वहाँ का जो अरब कल्चर है उसमें आमतौर पर जो है ख्वातीन जो है वो सियासी अमल में जो है कहीं दिखाई नहीं देती, या अब तक जो सूरत हाल है वो तकरीबन कमोबेश यही है। लेकिन बहरैन के जो मुजाहरे हैं उसमें हम देखते हैं कि मर्दों के साथ साथ उनके शाना बशाना ख्वातीन भी जो हैं वो मुसलसल वहाँ मुजाहरों में जो है हिस्सा ले रही हैं और फाल किरदार अदा कर रही हैं। और ये इस चीज़ का गमाज है और इस चीज़ की भी पेशबीनी मैं समझता हूँ की जा सकती है कि लोगों को जो है वो यकीन हो चला है और उनको ये आसार नज़र आने लगे हैं कि बहरैन की हुकूमत जो है यानी आले खलीफा की जो शाही हुकूमत है ख़ानदानी और मोरिसी वो ज़्यादा देर तक वहाँ दमाम नहीं ला सकेगी। और इलाके में जो तहरीकें चल पड़ी हैं और उसके जो असरात आवाम में और कौमों में जो नज़र आ रहे हैं उसके पेश नज़र भी हुकूमतों में अब इतना दमखम नहीं रहा कि वो आवाम के सामने ज़्यादा अरसे ठहर सकें। जो कुछ ये ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं फोर्सेज आई हुई हैं चाहे सऊदी अरब की हों चाहे खुद बहरैन की फोर्सेज हों, ये उसका सारा जो उसकी जिसे कहें कि उनकी हिमायत और पुष्पनाई पर जो है वही अमरीकी बहरी बेड़ा है और अमरीकी फोर्सेज हैं या उनको बैरूनी हिमायत जो या हिमायत हासिल है उसके बलबूते पर जो है वो इस कस्म के जो है इकदाम जो है।
एक ही जुमले में मैं जवाब चाहूंगा कि आज तो हम इनकलाब के आगाज की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं, 14 फरवरी 2014 को हम इनकलाब की कामयाबी की सालगिरह मनाएंगे?
मैं यकीन से ज़ाहिर है मैं पेशबिनी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो कुछ हालात नजर आ रहे हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि आइंदा साल जो है वो बहरैन के अवाम जो हैं वो एक जमहूरी हुकूमत के साय में जो है जश्न मनाएंगे अपनी आज़ादी का।
बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की एक गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और बहरैन के इनकलाब की खसूसियत और दूसरे और दीगर जो इनकलाबात हैं उनसे आपने मुआज़ना भी मुलाहिज़ा फरमाया कि एक पुरान कौम किस तरह से अपने जायज़ हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। और जाहिर है कि ये बात इस बात की गमाज है कि उनके इरादे मुस्तहकम हैं और उन्होंने अपने मुल्क को सियासी एतबार से एक जमहूरी मुल्क में तब्दील करने का तहिया और फैसला कर लिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जनाब।